भर एक फरवरी गुरुवार, मैं हूं आदर्श राठौर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया वित्त वर्ष 2018-19 का बजट। जानेंगे किसकी भरी झोली, कौन रहा खाली हाथ।
सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम डेढ़ गुना करने का फैसला ले लिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने की अरुण जेटली की तारीफ, लेकिन विपक्ष ने कहा इस बजट से सरकार के प्रति बढ़ेगी नाराजगी।
बहुत ही निराशाजनक बजट है, गरीब किसान मध्य वर्ग को कोई राहत नहीं दी है उन्होंने।
होगी बात राजस्थान की, जहां उपचुनाव में तीनों सीटें कांग्रेस से हारी बीजेपी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2018-19 के लिए आज लोकसभा में बजट पेश किया। बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम देने की बात कही गई है। मोबाइल और टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से मोबाइल और टीवी अब महंगे हो जाएंगे। वहीं एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत फिलहाल 2 रुपये प्रति लीटर कम हो गई है। राजस्थान में लोकसभा की 2 सीटों और विधानसभा की 1 सीट के लिए हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अजमेर और अलवर की लोकसभा सीट कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली है। वहीं मांडलगढ़ विधानसभा सीट भी कांग्रेस ने अपने नाम कर ली है। उधर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने नावपाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को हरा दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने उलुबेरिया लोकसभा सीट पर हुआ उपचुनाव भी जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि म्यांमार में सामूहिक कब्रों में रोहिंग्या मुसलमानों के लगभग 400 शव मिलने संबंधी रिपोर्टों की जांच होनी चाहिए। म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि यांग हीली का कहना है,
Yes, I would think that these are part of the hallmarks of a genocide, and we have to refer Myanmar and its people and the democratic transition to the.
मेरा मानना है कि ये सामूहिक कब्रें बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं की निशानी है। हमें इसकी जांच करनी होगी इससे पहले कि म्यांमार और उसके लोग अपने लोकतांत्रिक भविष्य में आगे की ओर बढ़ें। मुझे लगता है कि म्यांमार को इस बोझ से मुक्ति पाने की जरूरत है। हमें इन हत्याओं की जिम्मेदारी तय करनी होगी। यह थे म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने अपने 28 खिलाड़ियों पर डोपिंग की वजह से ओलंपिक खेलों में शामिल होने पर लगे आजीवन प्रतिबंध को खत्म करने के फैसले का स्वागत किया है। रूस ने इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से आग्रह किया है कि दक्षिण कोरिया में इसी महीने होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में रूस के इन खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आरोप है कि रूस अपने खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि रूस इस आरोप से इनकार करता रहा है। दक्षिण कोरिया में इस महीने होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के मुख्य आयोजकों ने टिकटों की कम हो रही बिक्री पर चिंता जताई है। दाम अधिक होने की वजह से ओलंपिक खेलों की टिकटें कम बिक रही हैं। कुछ प्रतियोगिताओं को दिखाने के लिए आयोजक दर्शकों से टिकट के नाम पर $900 से ज्यादा रकम वसूल रहे हैं। उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के दूत जोसेफ यून ने कहा है कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया से बातचीत का हर रास्ता खुला रखा है। जापान की राजधानी टोक्यो में एक संवाददाता सम्मेलन में अमरीकी दूत ने कहा,
is very much for peaceful.
हमारी नीति उत्तर कोरिया के परमाणु संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए है। हम ये बात कई बार कह चुके हैं। हम संवाद चाहते हैं, उत्तर कोरिया को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। आपको लगता होगा कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हम ऐसे किसी विकल्प पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये थे उत्तर कोरिया के लिए अमरीकी दूत जोसेफ यून के शब्द। बीबीसी समाचार।
कहीं से भी इस बजट से फायदा नहीं दिख रहा है। खाद में सब्सिडी नहीं दिया है, सिंचाई की कोई व्यवस्था अलग से नहीं किया है।
हम तो चाहते थे कि आम जनता गरीबों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे पढ़े जो MBA MCA किए हैं ना वो 10-10 हजार में 5-5 हजार में काम कर रहे हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है।
बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इन द बजट, आई थिंक वी शुड स्टॉप स्टिकिंग टू द नेगेटिव्स अलोन।
क्या सस्ता क्या महंगा, लोगों को बजट से इसी की उम्मीद रहती है कि शायद कुछ चीजें सस्ती होंगी, लेकिन ये बजट आम जनता के लिए छलावा है।
आई एम फ्रॉम हैदराबाद। टैक्स में कुछ कमी नहीं हुआ है, जो भी हमारा सैलरी मिलता है उसमें ज्यादातर टैक्स में चला जाता है, तो फिर उसमें कुछ कमी होती तो ठीक रहता।
हम लोग स्टूडेंट है, एजुकेशन में क्या है क्या नहीं हमको ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा।
ऐसे बजट से हमें क्या फायदा, जो न तो कोई चीज के पैसे घटाए।
बजट देख के तो अपनी तो ये प्रतिक्रिया की इनकम टैक्स में कोई स्लैब चेंज किया नहीं है, तो टैक्स में रिबेट मिलेगी नहीं, तो 3-4 साल से तो ये हो रहा है कंटिन्यू।
बजट अच्छा है और मोदी जी को एक बार चांस 2022 तक मिलना चाहिए।
कोई बदलाव नहीं आएगा, 4 साल तो हो गए बीजेपी सरकार को देखते हुए। किसान आत्महत्या कर रहा है जगह जगह, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और किसानों की हर फसल के दाम घट रहे हैं, कहीं भी किसान को फायदा नहीं मिल रहा है।
मिडिल क्लास को अगर कुछ नहीं मिला, पर गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी सोच है कि 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष मेडिकल सुविधा दी जाएगी, वो अपने आप में बड़ी सराहनीय है।
ये आप सुन रहे थे बजट 2018-19 पर देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों की प्रतिक्रिया। मैं आदर्श राठौर BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। आज का लगभग पूरा कार्यक्रम बजट पर आधारित है, इसलिए आपकी चिट्ठियां आपकी राय आप अगले हफ्ते सुन पाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जो बजट पेश किया वो 2019 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। इसकी खास बातें क्या रहीं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुबैर अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
अरुण जेटली का बजट भाषण आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ और लगभग 1.5 घंटे चला। इसमें अधिकतर वर्गों के लिए कुछ न कुछ छूट का ऐलान किया गया। मध्यम वर्ग मायूस नजर आया, लेकिन किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अहम प्रस्ताव रखे गए। अरुण जेटली ने कहा,
मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दुगनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
ध्यान देने वाली बात यह थी कि वित्त मंत्री जब किसानों के बारे में ऐलान कर रहे थे तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि बदहाल कृषि क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना एक आर्थिक और नैतिक जरूरत थी, लेकिन विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि बीते सालों में उन्हें नज़रअंदाज ही क्यों किया गया। उधर वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में वाईफाई का जाल बिछाने का भी प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा,
द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोजेस टू स्टेप अप 5 लाख।
अरुण जेटली कह रहे थे कि सरकार ने 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जो 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को ब्रॉडबैंड की सुविधाएं प्रदान करेगा। ये थे शब्द अरुण जेटली के। वित्त मंत्री ने कई और वर्गों का भी ध्यान रखा। इनमें 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 10 करोड़ परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का इंतजाम जिसमें प्रति व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए का बीमा और 70 लाख नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य शामिल थे। इस बजट में अरुण जेटली ने महिलाओं का भी दिल जीतने की कोशिश की।
टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर वुमेन इन द फॉर्मल सेक्टर।
औपचारिक क्षेत्र में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उच्चतर मजदूरी घर ले जाने के लिए मैं संविधान में संशोधन करने का सुझाव रखता हूं, ताकि महिलाओं को अपने रोजगार के पहले 3 वर्षों में उनके योगदान को 12% या 10% से कम करके 8% कर दिया जाए। ये थे वित्त मंत्री के शब्द। मध्यम वर्ग और नौकर पेशा वालों को बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि उन्हें आयकर में कुछ ज्यादा छूट नहीं मिली। इस वर्ग को वित्त मंत्री ने 40,000 रुपये का एक स्टैंडर्ड छूट जरूर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य पर उपकर 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है, यानी एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से वापस ले लिया। उधर लंबे समय तक पूंजीगत लाभ कर और इक्विटी म्यूचुअल फंडों के लिए 10% का वितरण का प्रस्ताव छोटे निवेशकों और शेयर बाजारों के लिए एक बुरी खबर थी। कुल मिलाके लोगों का कहना था कि बजट में किसानों पर ज्यादा ध्यान रखा गया है और ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं पहुंचाने का भी प्रस्ताव है। अब कल इस पे बहस होगी। जुबैर अहमद, PBC, दिल्ली।
एक और जहां सरकार इस बजट को गरीबों और किसानों के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष इसे बेहद कमजोर बजट मान रहा है। आज पेश हुए बजट पर क्या है विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया, बता रही हैं BBC संवाददाता भूमिका राय।
आज सदन में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट का पिटारा खोला। बजट की शुरुआत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पाद और किसानों के हित के लिए की जाने वाली घोषणाओं से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने अरुण जेटली और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।
श्रीमान अरुण जेटली जी को और उनकी पूरी टीम को इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। इस बजट में देश के एग्रीकल्चर से लेकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर बात पर पूरा ध्यान दिया गया है। अगर बजट में गरीब और मध्यम वर्ग की चिंताओं को दूर करने वाली हेल्थ की योजनाएं हैं, आरोग्य की योजनाएं हैं, तो देश के छोटे उद्यमियों की वेल्थ बढ़ाने वाली भी योजनाएं शामिल हैं।
एक और जहां सरकार इस बजट को आम लोगों के हित का सोचकर तैयार किया हुआ बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोगों को निराश करने वाला बजट मान रहा है। कांग्रेस नेता शकील अहमद का कहना है कि मोदी सरकार को लेकर लोगों में पहले से ही गुस्सा था और इस बजट के बाद इसमें और इजाफा होगा।
देखिए, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है और ये मोदी जी का आखिरी बजट था जिसकी वजह से लोगों को उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आम जनता में एक राहत की सांस ली जाएगी। देखिए, गरीब किसान मध्यवर्ग को कोई राहत नहीं दी है उन्होंने।
वहीं CPIM नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि लोगों को भाषण नहीं राशन चाहिए।
ये चुनाव के लिए इनका सरकार का ये अंतिम बजट था और इसलिए वो ज्यादातर जुमलाबाजी किए हैं। जैसे चुनाव में लोग घोषणा करते हैं और विदेश से काला धन ले आएंगे, 15 लाख देंगे, वैसे ही सरकारी तौर पर वैसी घोषणा किया गया है। जो चुनौती हमारे देश के सामने, उसको स्वीकार किया नहीं गया, उसके बारे में भाषण हुआ है लेकिन राशन कम है। इसलिए वो एक कैंपेन के लिए वो समझ रहे हैं, जैसे वो स्टैंड अप इंडिया किए थे, वैसे जैसे वो कहते हैं कि स्वास्थ्य में जो भी इलाज करेगा उसको 5 लाख रुपए देंगे। तो ये भाषण के लिए या प्रचार के लिए बजट है लेकिन काम के लिए नहीं है। तब तो वो स्वास्थ्य में खर्च करने का जो रकम था उसको बढ़ाना चाहिए था।
एक और जहां सरकार बजट को लोगों के हित में बता रही है, वहीं इनकम टैक्स में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने से नौकरी पेशा लोगों में निराशा है। वहीं 70 लाख नई नौकरियों की बात से एक वर्ग को कुछ उम्मीदें भी जगी हैं।
भूमिका राय बता रही थी कि बजट पर क्या प्रतिक्रिया रही राजनीतिक दलों की। अब बात भारतीय व्यापार और उद्योग जगत की, जो पहले से ही कई तरह के दबाव झेल रहा है। इस बजट से व्यापार और उद्योग जगत बहुत उत्साहित नहीं है। कम बिक्री का असर तो धंधे पर दिख ही रहा था, ऊपर से नोटबंदी और GST ने रही सही कसर पूरी कर दी। इस बजट में भी कई नए तरह के टैक्स लगाए गए हैं। हालांकि व्यापार जगत में आशा भी है। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट।
अरुण जेटली के चौथे बजट शुरू होने के थोड़ी देर बाद भले ही शेयर बाजार ने भारी गिरावट दर्ज कर ली हो, लेकिन व्यापार और उद्योग जगत के नामी ग्रामी लोगों का बजट 2018-19 को लेकर नजरिया मिला जुला था। वित्त मंत्री के लगभग 2 घंटे लंबे चले बजट भाषण के बाद मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए व्यापार और उद्योग समूह की पूर्व अध्यक्ष नैना लाल खिदवाई ने कहा, ये निर्भर करेगा कि आप किस क्षेत्र पर नजर डाल रहे हैं, और जहां तक वित्तीय प्रबंधन का सवाल है तो मैं उसमें सरकार को 10 में से 5 दूंगी। एक तरह से देखें तो ये एक मिलाजुला बजट है। नैला लाल खिदवाई के शब्द। पिछले बजट में वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3% रखने का लक्ष्य था, लेकिन अब उसे 3.5% कर दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य सरकार ने पहले ही 3.3% रखा है। इसे लेकर व्यापार जगत चिंतित दिखा। शेयर बाजार के गिरने की एक वजह ये भी बताई गई है। देश में उद्योग जगत पहले से ही बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। क्रेडिट ऑफ टेक यानी के नए और पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लेने की दर पहले से गिरी हुई है। वित्त मंत्री ने इसे बेहतर बनाने के लिए बजट में घोषणा की है। सेबी इस पर नियम बनाएगा। इस पर फिक्की अध्यक्ष राशेश शाह ने कहा, दूसरी चीज जिसके बारे में बहुत नहीं कहा गया है वो है कॉर्पोरेट सेक्टर को बॉन्ड मार्केट से अधिक पैसा उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। बड़ी कंपनियां अगर तकरीबन 25% फंड बॉन्ड मार्केट से उठाती हैं, इसका फायदा ये होगा कि बैंकों के पास वो पैसे बचेंगे जो वो बड़ी कंपनियों को कर्ज के तौर पर देते रहे हैं, तो ये फंड छोटे और मझोली कंपनियों को जा सकेगा। ये थे फिक्की के अध्यक्ष के शब्द। हालांकि बजट में कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25% कर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर बड़े उद्योग खुश नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा जिनका सालाना व्यापार 250 करोड़ रुपये का है। बड़े उद्योगों को लग रहा था कि जेटली इसमें किसी तरह की सीमा की घोषणा नहीं करेंगे, मगर इससे बड़ी जो चिंता व्यापार और उद्योग जगत के सामने आई है वो है कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, जिसे फिर से लागू कर दिया गया है। ये टैक्स साल 2004 में खत्म कर दिया गया था।
फैसल मोहम्मद अली बता रहे थे कि बजट में कुछ कस्टम ड्यूटीज और ब्रॉड मार्केट के खुलने से व्यापार जगत में इस बजट को लेकर कुछ आशा भी है। बजट का शेयर बाजार पर क्या असर रहा, जानने के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की बीबीसी बिजनेस संवाददाता समीर हाशमी से।
शेयर बाजार जो था काफी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे होता रहा। जब वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच स्टार्ट की, बजट की, उन्होंने उसको प्रस्तुत करना शुरू किया तो स्टॉक मार्केट ऊपर था, फिर एक घंटे के बाद स्टॉक मार्केट गिर गया। दो ऐसी खबरें जो थी जो बजट से निकल के आई जिसका असर नेगेटिव असर पड़ा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरा। एक तो जो फिस्कल डेफिसिट की बात की वित्त मंत्री ने, फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच गैप होता है, जो सरकार के पास होता है, उसमें उन्होंने जो टारगेट सेट किया था पिछले साल 3.2 का, वो अचीव नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने कहा कि 3.5% होगा इस साल। तो एक उसका असर पड़ा, लेकिन उससे बड़ा असर जो स्टॉक मार्केट पे पड़ा वो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो टैक्सेशन वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है कि 10% जो है टैक्स, जो भी मुनाफा होगा जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको जो है अब 10% जो अब मुनाफा वो कमाएंगे 1 लाख के ऊपर की रकम पे, उसके बाद 10% टैक्स देना होगा। इसका काफी असर पड़ा क्योंकि मार्केट 400 पॉइंट गिर गया था, लेकिन जब तक मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे रिकवरी हो गई थी और फ्लैट रहा। तो असली रिएक्शन जो है स्टॉक मार्केट का हमको अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज अब लोग स्पीच को पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या डिटेल्स में क्या है, जैसे कहा जाता है जो फाइन प्रिंट आएगा उसको पढ़ के, और फिर हम रिएक्शन देखेंगे अगले कुछ दिनों में।
इस बजट में क्या खास है ये समझने के लिए मैंने जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और पर्सनल फाइनेंस में विशेषज्ञता रखने वाले डीके मिश्रा से बात की और पूछा कि इस बजट का फोकस किस बात पर रहा।
देखिए, बजट का अगर फोकस की बात करते हैं तो ये बजट निश्चित तौर से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, उधर इसका ज्यादा फोकस रहा।
बहुत उम्मीदें लगाई जाती है हर बार टैक्स को लेकर राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा इस बार उतनी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
हाँ, निश्चित तौर से टैक्स के फ्रंट पे, खासतौर से इंडिविजुअल टैक्सेशन, पर्सनल टैक्सेशन के फ्रंट पे अपेक्षा के हिसाब से चीजें नहीं आई, तो इसलिए थोड़ा निराशा हाथ लगी हुई है। अब उसके पीछे निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और इलेक्शन ईयर होने की वजह से सरकार का ज्यादातर ध्यान गरीबों की तरफ, किसानों की तरफ रहा, तो इसलिए उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए, सैलरीड क्लास के लिए और पर्सनल टैक्सेशन पे उतनी राहत देना उचित नहीं समझा, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज में अल्टीमेटली ये बैलेंसिंग गेम होता है, एडजस्टमेंट्स का गेम होता है, एक तरफ से धन ले जाके दूसरी तरफ खर्च करने का व्यवस्था की जाती है।
जब अगले साल चुनाव है, सबको खुश करने की जरूरत होती है, तो मतलब क्यों अछूती रहेगी मिडिल क्लासेस में?
देखिए, निश्चित तौर से उस फ्रंट पे ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास उतना नहीं पाया जितना अपेक्षा की गई थी। थोड़ा बहुत दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड डिडक्शन के फॉर्म में एक 40,000 का छूट दिया, थोड़ा एक एडिशनल मेडिकल में छूट की बात कही, लेकिन साथ में क्योंकि 1% का सेस भी लग गया तो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो इफेक्ट। सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने एक 8% इंटरेस्ट की स्कीम है प्रधानमंत्री वरिष्ठ योजना करके, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, जिसमें 7.5 लाख रुपए का अनाउंसमेंट उन्होंने 1 वर्ष पहले किया था, उसको बढ़ा के उन्होंने कहा कि 15 लाख तक कर दिया जाएगा और उस पर 8% एश्योर्ड मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन की तरफ ये ध्यान तो है कि उनकी इंटरेस्ट की इनकम सुरक्षित रहे, उनको मेडिकल फैसिलिटीज में हम रिलीफ दें, लेकिन जो मध्यम वर्गीय और सैलरीड क्लास और वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर सरकार ने शायद ये उचित नहीं समझा कि इस बार कुछ दिया जाए बजट में, और जो थोड़ा बहुत दिया है वो इस हिसाब से दिया है कि चले कोई राहत की सांस लगे कि रिलीफ उनको मिली हुई है।
एक आखिरी सवाल, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्या ये लोक लुभावन बजट है पूरी तरह से?
इसको दो भागों में अगर मैं बांट दूं तो ज्यादा अच्छे तरीके से मैं इसका निष्कर्ष दे पाऊंगा। जहां तक ये बजट किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए है, और वो निश्चित तौर से एक लोक लुभावना बजट ही है, और जिस तरीके से सरकार ने अपना वादा किया था उसकी दिशा में काफ़ी बड़ा ये कदम है। दूसरा पक्ष ये है कि पर्सनल टैक्सेशन और इनकम टैक्स के फ्रंट पे अगर इसको देखा जाए तो जितनी उम्मीदें थी उस पर पूरी तरीके से नहीं आया, या वो काफ़ी तरीकों से नहीं आया, तो इस पर लोगों को निराशा हाथ लगी है।
किसानों की बात हो गई, उद्योगों की बात हो गई, और शेयर बाजार की भी बात हो गई। इस बजट में महिलाओं के लिए क्या है? वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों की जानकार सुषमा रामचंद्रन ने बीबीसी से बातचीत में क्या कहा, सुनिए।
देखिए, एक तो उन्होंने फायदा ये दिया है कि आप जो प्रोविडेंट फंड आपका होता है और जिसमें एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होता है 10 या 12%, उन्होंने कहा महिलाओं के लिए सिर्फ 8% होगा। 8% पहले 3 साल में जब वो नौकरी में लगेंगी उसके बाद बढ़ जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो वही रहेगा जो 10 या 12% होना चाहिए। तो ये एक फायदेमंद चीज है। दूसरा, अगर आप देखें कि रूरल एरियाज के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए क्रेडिट टारगेट्स जो है उन्होंने बहुत बढ़ा दिए कि उनकी लेंडिंग टारगेट्स बहुत बढ़ जाएं। तीसरा, उन्होंने मुद्रा योजना जो छोटी लोन्स जो होती हैं जिसमें 75% महिलाएं होती हैं तो उनमें उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है। जो उज्ज्वला स्कीम जिसमें गैस मुफ्त दी जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, और उसका भी उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है कि बहुत पहले 5 करोड़ का टारगेट था लेकिन अब 8 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा हर साल। तो वो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये जो उज्ज्वला स्कीम से लोग जो महिलाएं जो हमेशा ये लकड़ी से अपना खाना बनाती थी और उनके धुआं उनकी आंखों में आता था और उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था, उससे वो अब वो गैस के सिलेंडर उनको मिलेंगे उज्ज्वला स्कीम, और वो भी फ्री।
वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन बता रही थी कि इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब बात करते हैं उपचुनावों की। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने नावपाड़ा विधानसभा सीट और उलुबेरिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। इसी तरह राजस्थान में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी ने कहा है कि वो हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
सत्तारूढ़ बीजेपी इन परिणामों से हैरान और परेशान है तो कांग्रेस उत्सव मुद्रा में है। अलवर में कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव और अजमेर से लोकसभा सीट से रघु शर्मा ने वोटों के बड़े अंतर से अपनी जीत दर्ज कराई है। सत्तारूढ़ बीजेपी भीलवाड़ा में मांडलगढ़ विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाई। इन उपचुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने जमकर प्रचार किया और खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कमान अपने हाथ में ले रखी थी। वे जातिवार समाज के विभिन्न लोगों से मिली तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की। इन परिणामों से जहां सत्तारूढ़ बीजेपी स्तब्ध है, वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 10 माह बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य बीजेपी प्रवक्ता मुकेश चेलावत कहते हैं इन नतीजों का विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं होगा।
जो भी जनता ने निर्णय दिया उसको हम शिरोधार्य करते हैं, आगे इस पर मंथन करेंगे कि हमारा कहाँ हमारी कहीं कमजोरी रही है, तो निश्चित रूप से हम उसको संगठनात्मक स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी जहाँ सुधार की गुंजाइश होगी हम उसका सुधार करके और पूरी ताकत के साथ में जो आम चुनाव होने वाले हैं 2018-19 में, दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर वापस भारी बहुमत के साथ में सरकार में आएगी। हर चुनाव के उद्देश्य बदल जाते हैं। विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं तो लोकसभा चुनाव के अंदर केंद्रीय स्तर के मुद्दे काम में लिए जाते हैं। और जहां तक उपचुनाव का सवाल है, उपचुनाव में मतदाता को ये पता होता है कि मेरे इस मत से न तो सरकार बन रही है न बिगड़ रही है।
कांग्रेस का कहना है कि ये नतीजे पड़ोस के गुजरात में बने रुझान का ही विस्तार है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस जीत का श्रेय अपने नेता राहुल गांधी को देते हैं।
सबसे बड़ा तो जाता राहुल गांधी जी को जो हमारे नेता होते हैं। गुजरात में उन्होंने जो जिस प्रकार कैंपेन किया और एजेंडा फिक्स किया जवाब नहीं दे पाए मोदी जी अमित शाह जी, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो नौजवान रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, महंगाई की बात हो, वो जवाब दे ही नहीं पाए थे। उसी से एजेंडा फिक्स हो गया। उसी दिन जब हमने कहा था कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और वो रिफ्लेक्शन रहा राजस्थान के अंदर। और फिर हम लोग सामूहिक रूप से निकले, सभी लोग, सभी नेता लोग निकले, तो कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर हो गया और सब कार्यकर्ता एकजुट हो गए। कार्यकर्ताओं की जीत है और कांग्रेस एकता की जीत है।
इन चुनाव में राजपूत संगठनों और करणी सेना ने भी बीजेपी के विरुद्ध प्रचार किया। राजपूत पारंपरिक तौर पर बीजेपी के निकट समझे जाते हैं। राजस्थान में बीजेपी 4 साल से सत्ता में है। सतह पर ना तो कोई विरोध दिखाई देता था, ना विपक्ष की कोई आवाज सुनाई देती थी। लेकिन इन चुनाव नतीजों ने बीजेपी नेतृत्व को चिंतित कर दिया है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और अब समय है खेल समाचारों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूर्यांशी पांडे। सूर्यांशी, क्या है आज की खेल की खबरें?
अगर आदर्श जी बात करें अगर अभी के स्कोर की, तो आज दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा है, पहला ODI मुकाबला है और 235 पर है दक्षिण अफ्रीका और 6 विकेट का नुकसान पर है और 46 ओवर चल रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात दक्षिण अफ्रीका की ये होगी कि फाफ डू प्लेसिस जो कि कप्तान हैं इस टीम के, उन्होंने शतक अपना जड़ दिया है और 101 गेंद पर उन्होंने 100 रन बना लिए हैं। और अगर हम बात करें शुरुआत की, तो टॉस जो है वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता था और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजी करना ही सबसे पहले एक अहम फैसला था, क्योंकि विराट कोहली भी यही चाह रहे थे। लेकिन बाजी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के हाथ लगी और उसके बाद पहले 5 ओवर में तो कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन उसके बाद पहली खुशी जो है वो जसप्रीत बुमराह ने दी भारत को, जब अमला को उन्होंने 16 रन पर पवेलियन भेज दिया। उसके बाद युजवेंद्र चहल ने क्विंटन डीकॉक को 34 रन पर ही LPW करवा दिया था। और अब अगर बात करें तो इस विकेट की बात करें तो बल्लेबाजी के लिए तो ये विकेट अच्छी है ही, साथ ही साथ स्पिनर्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, स्पिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है और इसीलिए स्पिनर्स का जादू भी देखने को मिला। अगर हम बात करें युजवेंद्र चहल की, तो उन्होंने अभी तक 2 विकेट लिए हैं और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए हैं और जसप्रीत बुमराह का, जैसे मैंने आपको बताया, 1 विकेट लिया है। तो ये तो खबर अभी यहाँ साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के मैदान से आ रही है, लेकिन एक खबर जो है वो साउथ कोरिया से आई है और वो खबर ये है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS ने 28 जो रशियन खिलाड़ी थे उनको डोपिंग के मामलों पर बैन जो लगाया गया था वो हटा दिया गया है। पहले वो 39 लोगों पर लगाया गया था, लेकिन उसमें से 28 रशियंस को जो है अब एक तरह से उनको अलाउ कर दिया है कि वो विंटर ओलंपिक्स में खेलने को हिस्सा ले सकते हैं, बिल्कुल। और मैथ्यू रीब ने कहा है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि इन 28 रूसी खिलाड़ियों के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस स्ट्रांग नहीं था जिसके तहत हम ये कह सकते थे कि ये डोपिंग के लिए इनको अपराधी या घोषित किया जाए। तो ये एक खबर वहाँ से, साउथ कोरिया से आई है। और बैडमिंटन की बात करें तो श्रेयांश जायसवाल को हराकर पारुपल्ली कश्यप जो है क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुँच चुके हैं और अब उनका मुकाबला होगा चाइना के खिलाड़ी छाओ बिन से। तो ये खबर है खेल की।
बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यांशी। और इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2018-19 के लिए आज लोकसभा में बजट पेश किया। बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बजट में किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना दाम देने की बात कही गई है। राजस्थान में लोकसभा की 2 सीटों और विधानसभा की 1 सीट के लिए हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उधर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने नावपाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को हरा दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने उलुबेरिया लोकसभा सीट पर हुआ उपचुनाव भी जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि म्यांमार में सामूहिक कब्रों में रोहिंग्या मुसलमानों के लगभग 400 शव मिलने संबंधी रिपोर्टों की जाँच होनी चाहिए। उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के दूत जोसेफ यून ने कहा है कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया से बातचीत का हर रास्ता खुला रखा है। रूस ने अपने 28 खिलाड़ियों पर डोपिंग की वजह से ओलंपिक खेलों में शामिल होने पर लगे आजीवन प्रतिबंध को खत्म करने के फैसले का स्वागत किया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया ब्रिजेश ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।